से बेटे को लेकर समुद्र तट पर टहल रही थी। दोनों खड़े थे और समुद्र की आती हुई प्रचंड लहरों को देख रहे थे। शाम का समय था, लहरें तेज थी, आ रही थी, जा रही थी, और जब वो दोनों खड़े थे तब अचानक एक बहुत ऊंची दीवार जैसी लहर आई, उन दोनों के ऊपर, और थोड़ी देर में लहर लौट गई। उस मां ने जब बाजू में देखा तो उसका बेटा गायब था। वो लहर उसके बेटे को ले चली गई और वो चिल्लाने लगी, उसका नाम पुकार पुकार के, मेलविन मेलविन मेलविन। उस बेटे का नाम मेलविन था। कहीं नहीं मिला, दूर दूर तक देखा, कहीं नामो निशान नहीं। और फिर घुटनों के बल टेक कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरे बेटे को लौटा दे, हे प्रभु मेरी मदद कर, क्यों तूने ऐसा किया। और बहुत सारे वादे भी करने लगी कि अगर मिल जाए तो तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। दान करूंगी पुण्य करूंगी पर मेरा बेटा मुझे लौटा दे। तो बहुत याचनाएं बहुत फरियाद बहुत पुकार आर्तनाद करती है। और फिर अचानक एक दूसरी लहर आती है और लौट चली जाती है। ये भी लहर बहुत बड़ी थी दीवार के जैसी। और जो वो लहर आती है और चली जाती है, अब देखती है उसका बेटा खड़ा है। उसे बहुत खुशी होती है, उसको सीने से लगा लेती है और फिर ऊपर देखती है आसमान की तरफ और फिर पुकारने लगती है, हे प्रभु मदद कर, हे प्रभु कृपा कर। मेलविन इज हियर बट वेयर इज द हैट। बेटा तो आ गया पर उसके सिर पर टोपी थी वो नहीं है। हे प्रभु वो टोपी कहां है, हे प्रभु वो हैट कहां है। और फिर से उसका दुखड़ा चालू हो जाता है। जब वो था तब किसी और कारण से दुखी थी, जब वो नहीं था तो दुखी थी कि वो नहीं है, अब फिर आ गया फिर भी दुखी है क्योंकि अब उसने जो टोपी पहनी थी वो टोपी नहीं है। और यही दशा हर व्यक्ति की है, शिकायत कंप्लेंट्स। हर चेतना शिकायतों से भरी है, दुखों से भरी है, याचनाओं से भरी है, फरियाद से भरी है। और अपनी इच्छाओं को अपनी याचनाओं को अपनी डिमांड्स को अपने हक जतलाने की प्रवृत्ति को हर व्यक्ति क्या कह रहा है, ये प्रेम है। परंतु प्रेम का इन किन्हीं भी चीजों से कोई भी संबंध नहीं है। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। व्यक्ति अपने मोह को प्रेम कहता है, मोह का प्रेम से कोई संबंध नहीं। प्रेम बहुत निर्मोही है। मोह जमीन पर खड़ा है, उसकी जड़े जड़े जमीन में है। प्रेम आकाश में उड़ता परिंदा है, स्वतंत्र है। मोह में मालकियत है या गुलामी है। मोह कहता है मैं मालिक तुम गुलाम, या मोह स्वयं को गुलाम बना देता है और किसी को मालिक। परंतु प्रेम में ना तो मालकियत है ना तो गुलामी है, ना कोई डिमांड है ना कोई एक्सपेक्टेशन है ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई आसक्ति ना कोई कंप्लेंट ना कोई शिकायत ना कोई इच्छा ना कोई भय ना खो जाने का डर, कुछ भी नहीं है। प्रेम बहुत ऊंची भावना है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। प्रेम का शब्दों से भी कोई लेना देना नहीं है। प्रेम तो अवाक है, अवर्णनीय है, निर्वचनीय है, निस्तब्ध है, निशब्द है, खामोशी है। सिर्फ एहसास है, एक फीलिंग, एक परसेप्शन, एक अनुभव। रूह से महसूस करो, उसका संबंध रूह से है। शरीर से तो प्रेम का संबंध ही नहीं है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। और जो लोग अपने प्रेम में शरीर को ला रहे हैं उन्हें प्रेम का कोई अनुभव कभी हो नहीं सकता। प्रेम करने वाले संसार में बहुत गिने चुने हैं। प्रेम अर्थात समर्पण, प्रेम अर्थात कुर्बानी, प्रेम अर्थात लुट जाना। इसके लिए भारतीय दर्शन में भगवान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शायद किसी भी दर्शन में किसी भी शास्त्र में किसी भी धर्म में किसी भी देश में प्रयोग नहीं किया गया। हरि, भगवान को क्या कहा जाता है, हरि, जो क्या करता है, हर लेता है, छीन लेता है, लुट जाना, वो प्रेम है। क्या हमारे पास प्रेम का जरा भी अनुभव है? शायद नहीं, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो। जो संबंध बनाते संसार में उसको फटाफट नाम देते हैं प्रेम, तो अनाम है, प्रेम अनामिका है, नेमलेस। प्रेम का नाम और रूप से कोई संबंध नहीं है। जहां रूप बीच में है दो व्यक्तियों के बीच में, वो प्रेम है ही नहीं, वासना है। जहां देह बीच में है वो वासना है, वो मोह है। जहां एक्सपेक्टेशन है, शिकायत से भरा चित्त, प्रेम को क्या जाने, प्रेम नष्ट मोह है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार कोई आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहां करती है, मौन ही है जो सुनता है जो बोलता है। ये ना बुझती है ना रुकती है ना ठहरती है, कई नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। प्रेम क्या है? एक नूर की बूंद है, आलोक की, प्रकाश की, वो बूंद है जो बही रही है, वो कहीं रुकती नहीं है, किसी के लिए रुकी नहीं है, किसी के होने न होने से, किसी के शरीर के होने न होने से प्रेम का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रेम अशरीरी है, प्रेम विदेही है, प्रेम रुकता नहीं है, प्रेम बुझता नहीं है, अखंड ज्योति है प्रेम। प्रेम कहीं पर भी नहीं ठहरता। नूर की क्या है? बूंद है जो सदियों बहा चली, बहती चली आ रही है, मुस्कुराहट से खिली रहती आंखों में गई और पलकों में उजाले से झुके रहते, होठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने हैं, रुके रहते हैं। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, इसे कोई रिश्ता नहीं बना दो और उसमें फंस नहीं जाओ, उसे प्रेम ही रहने दो। तो आज हम चर्चा करेंगे रूहानी एहसास की, रूहानी प्रेम की, रूहानी रिश्तों की, स्पिरिचुअल फीलिंग, स्पिरिचुअल लव की। लव क्या है? स्पिरिचुअल लव क्या है? रूहानी आत्मिक आत्मीयता का प्रेम क्या है? अलौकिक प्रेम क्या है? और प्रेम को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। प्रेम एक रहस्य है, एक राज, एक मिस्ट्री, जिसे सारे जीवन भर समझना होता है, यह है क्या। और हर बार ये प्रश्न है कि क्या यह प्रेम था जो दिल में भावनाएं उठी, क्या वो प्रेम की है या देहिक है? जैसे कहा, प्रेम का देह से तो कोई संबंध ही नहीं है, देह प्रेम का स्थान से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति यहां है या सातों समंदर पार, प्रेम का उससे कोई लेना देना नहीं। प्रेम का समय से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यक्ति अब है या नहीं है, या कभी पास्ट में था, जो बहुत दूर है वो नजदीक है। संडे की मुरली, बाबा किसको नजदीक देख रहे? जो दूर है उनको नजदीक, और जो नजदीक है आबू वाले उनको, वो बहुत दूर है। डिस्टेंस का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, स्थान का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, समय का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, और व्यक्ति के होने न होने से प्रेम का संबंध नहीं है, क्योंकि प्रेम नूर की बूंद है, सदा बहती रहती है। आज हम चर्चा करेंगे आत्मिक प्रेम की। उस प्रेम की चर्चा नहीं करेंगे जो प्रभु के साथ है, जो परमात्मा के साथ है, वो एक दूसरा विषय है, परमात्मा प्रेम, डिवाइन लव। परंतु सारे जो ब्राह्मण परिवार में भाई और बहने हैं, उनका आपस में किस तरह का संबंध हो, किस तरह का प्रेम हो, किस तरह का पवित्र रिश्ता हो, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा या इसका चिंतन हर एक रोज अमृत वेला, जितनी पॉइंट्स यहां पे बताई जाएगी वो सब एक बार सारी की पॉइंट्स, सारी पॉइंट्स याद करनी है कि मेरा सबके प्रति किस तरह का संबंध है। तो इस ब्राह्मण परिवार में दो ग्रुप्स है, एक है भाई और एक है बहने। भाइयों का बहनों के प्रति और बहनों का भाइयों के प्रति किस तरह का प्रेम हो। सबसे पहले तो नफरत ना हो, घृणा ईर्ष्या द्वेष ना हो, आपस में जो हो वो क्या हो, शुद्ध प्रेम, मोह ना हो, अटैचमेंट आसक्ति लगाव लागत बाबा के शब्द ये सब ना हो, पर क्या हो, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, पवित्र रिश्ता। और कभी कभी जैसा मुरलियों में आता है उतना पवित्र ये नहीं रह पाता, दूषित हो जाता है। जैसे एक गाय एक कसाई के हाथ से छूट गई और भागने लगी तेजी से, और कसाई उसके पीछे है, उसके हाथ में चाकू है, उसके कपड़ों पर खून के दाग है, धब्बे हैं, और वो गाय भाग रही है। एक ब्राह्मण के पास से होकर गुजरती है, वो कसाई वहां आता है और उस ब्राह्मण से पूछता है, क्या तुमने गाय देखी? कसाई दिखाई दे रहा है, हाथ में चाकू है और खून के धब्बे हैं, कसाई जरूर उस गाय को मारना चाहता है। गाय तो देखी है ब्राह्मण ने, पर अब उसके सामने प्रश्न है, क्या बोलू, झूठ बोलू? झूठ बोलू तो शास्त्रों में वे निषिद्ध है, फॉरबिडन, नॉट अलाउड, पर यदि मैं सच बोलता हूं तो यह कसाई उस गाय को मार देगा। वो कसाई पूछता है, बताओ क्या तुमने गाय देखी? वो चुप है, सोच रहा है क्या बोलू, हां बोलू कि ना बोलू, क्योंकि उसके सामने शास्त्र है, शास्त्र में लिखा है झूठ नहीं बोलना पाप है, और शास्त्र में अगर वो शास्त्र अनुसार करता है तो गाय मरती है, और गौ हत्या भी पाप है, उसमें मैं भागीदार हो रहा हूं, क्या करूं? सोच रहा है, कसाई पूछ रहा है, बोलो, पता है तो हां बोलो, नहीं पता है तो ना बोलो। वो कहता है, पता हां और ना का नहीं है, पता निषिद्ध कर्म का है। कसाई कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है निषिद्ध कर्म क्या होते, मुझे खाली इतना बताओ तुमने देखा कि नहीं देखा। वो कहता है, प्रश्न वो है ही नहीं, प्रश्न है सच बोलू या झूठ बोलू। कई बार किताबों में जो लिखा है और जीवन में जो परिस्थिति आ रही है ये बहुत भिन्न है। यहां पे सत सत विवेक, सरासर विवेक का प्रयोग करके ही हर परिस्थिति को निपटना होगा। मुरलियां बहुत है, श्रीमद बहुत सारी है, मर्यादा है, लिस्ट बहुत सारी पता है, पर फिर भी हर बार नई परिस्थिति आती है, एक उसमें से कौन सी श्रीमद को उठाकर वहां अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए या क्या किया जाए, ये उस समय का डिसीजन होगा, उस समय का जजमेंट, जज पावर होगी। उसी तरह संबंध भी ऐसे ही है, दो व्यक्ति के बीच में जो संबंध है उसमें ढेर सारी परतें हैं। कितनी? कम से कम 100। कभी बहुत प्यार करते हैं, कभी नफरत, कभी सोचते इसको मार दूं, कभी सोचते ये चला जाए और चला जाता है तो सोचता ये वापस आ जाए, कभी सोचते इसको मना लूं, कभी सोचते हैं इसको बहुत डांटूं, कुछ कुछ करते होते रहता है। दो के बीच में हजार परते, लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ऐसा क्या किया जाए कि हम सभी संबंधों में डिटैच भी रहे, खुश भी रहे, मधुर ये भी रहे, उस मधुरता भी रहे संबंध में, कड़वाहट भी ना हो, और दो व्यक्तियों की या व्यक्तियों की साथ में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे, ये लक्ष्य है। उसके लिए कुछ बातें करनी होगी। पहले चालू करेंगे ब्रह्मा कुमार से, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस जो देखा गया है संबंधों में वो भाई भाई के संबंध में कम, स्त्री स्त्री के संबंध में कम, बहन बहन के संबंध में कम, जहां भाई और बहन टकराते हैं, पुरुष और स्त्री टकराती है, वहां पर द्वंद्व चालू होता है और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा संबंध कैसा हो, और संबंधों का आधार है दृष्टिकोण। जो बोल व्यक्ति बोल रहा है, उस बोल का भी आधार है उसकी आंतरिक भावनाएं। भावनाएं बहुत श्रेष्ठ है अपने आप श्रेष्ठ बोल, भावनाएं दूषित है अपने आप कितना भी श्रेष्ठ बोल बोलने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा बीच में। तो हर ब्रह्मा कुमार, हर ब्रह्मा कुमारी बहन को, या फिर किसी भी बहन को, किसी भी फीमेल को किस तरह देखे, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी वो रूहानी प्रेम रहेगा, पवित्र प्रेम रहेगा, रूहानी एहसास होगा, उसमें दैहिक भावनाएं, दैहिक कामनाएं, दैहिक वासनाएं बीच में नहीं आएगी, क्योंकि वो आते ही दोनों भी गिर जाते। एक ही नहीं गिरता, दोनों गिरते। सबसे पहला, एक भाई बहन को कैसे देखे। सबसे पहले ये समझे कि ये परम धाम की क्या है, ज्योति है। देवियों के नव रूप है तो हम नव रूप देखेंगे। जब भी किसी बहन को देखे, पहले ब्रह्मा कुमार की बात चालू है, फिर ब्रह्मा कुमारी की बात करेंगे, क्या समझे कि ये कौन है। परम धाम की एक आत्मा है, परम धाम में रहने वाली ज्योति है। उसके अनादि संस्कार, आदि संस्कार क्या है, अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। परम धाम में आत्मा कैसी है, प्रेम स्वरूप है। अभी वो कुछ भी बोल रही है, उसको देखना ही नहीं है, किसको सुनना है, उसकी परम धाम की आवाज क्या है। परम धाम में वो प्रेम स्वरूप है, वो शांत स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो साक्षी है, वो निराधार है, वो निर्लेप है। परम धाम में वो कैसी है, निज स्वरूप में स्थित है। तो जब भी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते समय, अलग अलग समय में, दिन भर में अलग अलग अभ्यास करने हैं। अमृत वेले ये अभ्यास कर सकते हैं कि जिनके भी संपर्क में हम हैं, चाहे सेंटर पर रहने वाला कुमार है, स्टूडेंट्स है, ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में है, या संसार के किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां की बहनों के संपर्क में है, यही देखे कि ये आत्मा कौन है, परम धाम की एक आत्मा है। दूसरा, ब्रदर सोल, उसको आत्मा भाई भाई देखे। एक तो वो परम धाम की है, और इस शरीर यहां पर जब है, इस धरती पर वो आत्मा जब है, तब वो क्या है, एक शिव बाप की संतान है, कल की साकार मुरली, इस बात का जिक्र बाबा ने किया है। तो वो कौन है, आत्मा भाई है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व, ये संस्कारों को हटाना है। संडे की मुरली, भाइयों से मुलाकात, विदेशियों से, क्या परिवर्तन कर दिया उन्होंने, पुरुषत्व को मिटा दिया, यह परिवर्तन कर दिया। इसके लिए सहना नहीं है, वो प्रेम से सहना है। इसके लिए मेहनत नहीं है, मोहब्बत है वो, क्योंकि परिवर्तन कर दिया। तो दूसरा क्या देखेंगे उनको, भाई। तीसरा, बहन। क्या देखेंगे, बहन, क्योंकि ये स्त्री शरीर में है आत्मा, इसलिए वो क्या है, बहन है। और बहन भी कैसी, जैसे कि रियल सिस्टर है। क्या देखना है, ये मेरी जैसे रियल सिस्टर है, उसी भाव से देखना उसको। मेरी जो बहन है, अगर है तो, नहीं है तो ठीक, पर अगर रियल सिस्टर के प्रति किस तरह के भाव है, उसी तरह के भाव भी इस बहन के प्रति हो। सेम, ये तीसरा। चौथा, वो सतयुग की देवी है। कौन है वो, लक्ष्मी है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कलाओं से युक्त, सर्व गुणों से युक्त, सतो प्रधान और आत्माभिमानी, 7 गुण है उसमें सतयुग के देवी के, ये 7 गुण। तो ये सतयुग की क्या है, देवी है। इसमें जैसे यहां चित्र है ओम शांति भवन में ऊपर देवी का, उसी देवी रूप में सभी स्त्रियों को देखना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे निसंसिताम, नमस्तस्तु नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। वो शक्ति का, वो देवी है, उसको देवी के रूप में देखना। पांचवा, मंदिर की देवी है द्वापर से। कौन है वो? दुर्गा है, महाकाली है। शिव की अर्धांगिनी है। उसका पति बैठा है ऊपर। शक्ति है वो शिव की। उसको उसी रूप में देखना कि ये शिव शक्ति है, ये दुर्गा है, ये काली है, शीतला है, वैष्णवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, अन्नपूर्णा है। उस रूप में देखना। कहां की देवी है? मंदिर की देवी है। उसके बाद में छठवा, ब्रह्मा कुमारी है जो कि टीचर है। ये कौन है? एक ब्रह्मा कुमारी है जो सबकी टीचर है। उसे दीदी कहां गया है? दीदी केवल वो नहीं जो मुरली सुना है, पर सारी ब्रह्मा कुमारियों को बाबा ने टाइटल दे दिया है। भाइयों को वो टाइटल बहुत लेट मिलता है, दादा वाला शायद मिले भी ना, उसके पहले ऊपर। तो क्या समझना है? वो एक ब्रह्मा कुमारी टीचर है। उसके बाद में सातवा, बाल ब्रह्मचारिणी है। उसका ब्रह्मचर्य जगत के लिए वरदान है। उसे संकल्प में भी भंग करने का प्रयत्न नहीं करना, सभी भाइयों के लिए। उसका ब्रह्मचर्य प्रकृति के लिए खुराक है। उसका ब्रह्मचर्य जगत कल्याण का आधार है। तो वो कौन है? बाल ब्रह्मचारिणी। उसके बाद में आठवा, वो फरिश्ता है। और फरिश्ता ऊपर उठते उसका शरीर है ही नहीं, अशरीरी है वो। कैसा आकर्षण शरीर से, शरीर ही नहीं है, शरीर तो नीचे छूट गया है, वो अशरीरी है। आकाश में उड़ने वाला ये बहन कौन है? फरिश्ता है। और नौवा, नव रूप नव देवियों के, वो मां है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनकी शादी हुई, मां शारदा आई, पहली रात षोडशी पूजा की अपनी पत्नी की, बिठाकर उसको देवी के रूप में सजाया और उसी की पूजा की। पहले उसको पूछा कि तुम किस लिए आई हो, क्या मुझे गिराने आई हो? उन्होंने कहा, मां शारदा ने कहा, मैं तुम्हें गिराने नहीं, मैं आपकी सहभागिनी बनने आई हूं आध्यात्मिक पुरुषार्थ में। यंग फीमेल, उसी की पूजा करते और उसको मां के रूप में स्वीकार करते हो। तो ये सब बातें किसके लिए सोचनी है? सबसे पहले आएंगे अधर कुमार, अपनी पत्नी के लिए रोज सुबह अमृत वेले ये नव रूप इमर्ज करे, जो ज्ञान में चलते हैं दोनों, या फिर युग भाई ज्ञान में है और उसकी युगल ज्ञान में नहीं है, उसके लिए ये सोचे। और कुमार भी, तीनों कुमार, अधर कुमार जो और युगल जो ज्ञान में है, और अधर कुमार जिनकी युगल ज्ञान में नहीं है, वो ये सोचे कि ये कौन है? मेरी मां है, पत्नी नहीं है। पत्नी समझा कि फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, मैं इसका मालिक हूं, मैं पति परमेश्वर हूं, इसने वो करना चाहिए जो मैं कहूंगा, ये सारे भाव प्रकट हो जाते अपने आप। ये ही समझे कि ये कौन है? मां है, माता जी, बोलना नहीं पर मन में समझना कि ये मां है। शास्त्रों में लिखा है 10 पुत्र हो जाए, 10 पुत्र लिखा है उसमें, तो 11वां अपने पति को 11वां बेटा बना दो। ओल्ड पुराने जमाने की बातें हैं कि जितने बेटे हो गए अभी नेक्स्ट ये पति बेटा है, और पत्नी ही गुरु बन जाए उसकी, या तो
सबसे छोटा बेटा।
तो उसको क्या समझे? पत्नी को मां, क्या समझे उसको, फरिश्ता है ये, इसके शरीर से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह शरीर है। फिर क्या समझे, वो बाल ब्रह्मचारिणी है, उसके ब्रह्मचर्य की रक्षा मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। उसके बाद में वो कौन है, ब्रह्मा कुमारी है वो, भले वो ज्ञान में इस समय नहीं है, युगल अगर ज्ञान में नहीं है तो भी समझे कि ये भावी ब्रह्मा कुमारी बनने वाली है, ऐसा ही समझना उसको, तो वो बन जाएगी एक दिन। अभी शायद बाथरूम में बंद कर देती है मुरली के समय, परंतु समझना यही कि ये ब्रह्मा कुमारी बनने वाली है, सून वुड बी ब्रह्मा कुमारी, भावी ब्रह्मा कुमारी, आगामी ब्रह्मा कुमारी, होवनहार ब्रह्मा कुमारी, ऐसा ही समझना। एक तो वो जो ज्ञान में नहीं है, एक दूसरे जो ज्ञान में है वो समझे कि ये ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी केवल वो बहन जी नहीं है जो सेंटर पर है, ये भी हमारी सेंटर, ये हमारे घर की ब्रह्मा कुमारी है, टीचर दीदी, प्रैक्टिकल ये है। उसके बाद में ये मंदिर की देवी है, ये वही है जिसकी भक्त पूजा कर रहे हैं मंदिरों में जाकर, हे मां हे पाप नाशिनी दया करो कृपा करो, हे पाप हारिणी, हे दयामयी, हे जगत जननी, हे जगन माता, पुकार रहे भक्त, जय माता दी करके जा रहे पहाड़ों पर, शेरावाली, ये वही है शेरावाली, शेर पर सवार, पंगा मत लेना, शेर पर सवार है, अष्टभुजाधारी है, तुम्हारे दो भुजा है उसकी आठ, उसके आठ है, क्या समझना उसको, मंदिर की देवी। उसके बाद ये सतयुग की देवी है, ये सतयुग की देवी है, ये देवता बन, देवी बनने वाली है, इसमें इसकी प्यूरिटी अनटच्ड प्यूरिटी है, जैसे लक्ष्मी है, बस ये लक्ष्मी है सतयुग की, यही समझना उसको। उसके बाद में अगला ये क्या है, बहन है, अब वो रिश्ता खत्म करो पति पत्नी वाला, मन से, मन से उस रिश्ते को खत्म कर देना है जो युगल है, और जो कुमार है वो समझे मेरी ये रियल सिस्टर है, रियल सिस्टर। उसके बाद में ये आत्मा भाई है, ये आत्मा है, कौन भाई कौन बहन, कोई भाई बहन नहीं, केवल आत्मा है, जगमगाती ज्योति है, ये ज्योतियों का आगार है, मणियों का आगार है, ये बस डेपो होता है ना आगार, वैसा ये आगार है जहां मणियां रुकी हुई है। और सबसे पहला बताया इसके अनादि संस्कार इमर्ज करो, तो जब भी कोई भाई किसी भी बहन को देखे, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी है या नहीं है, चाहे पत्नी है या नहीं है, चाहे ज्ञान में चलती है या नहीं है, चाहे छोटी सी कन्या क्यों ना हो, वो वहां सो रही है एक इधर इधर, तो जगत जननी है, मां भी अपनी छोटी बेटी को क्या समझे कि ये जगत जननी है, पिता भी अपनी पिता छोटी बेटी को भी क्या समझे, ये जगत जननी आई है, कोई साधारण नहीं आई है, बाल ब्रह्मचारिणी है, जगत जननी है, नरक में उसको ढकेलने का संकल्प कभी नहीं करना, उसका जीवन यज्ञ के लिए है, यज्ञ के की अमानत है, यज्ञ के लिए आई है, फॉर द यज्ञ, थ्रू द यज्ञ, फ्रॉम द यज्ञ, टुवर्ड्स द यज्ञ, सब कुछ यज्ञ के लिए। तो ऐसे ये नव रूप है, जब ऐसी भावनाएं अंदर होगी तब रूहानी प्रेम आउटसाइड बाहर होगा, तब ईश्वरीय प्रेम प्रकट होगा, संबंधों में मधुरता आएगी, तब तक नहीं आएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ कड़वाहट, नहीं तो कुछ ना कुछ घृणा नफरत द्वंद या फिर षड्यंत्र, कुछ ना कुछ करेंगे, कैसे षड्यंत्र करे, वो तो महान आत्मा है, इतने सारे भाव अंदर प्रकट है, नहीं हो सकते। तो रूहानी एहसास तब होगा जब ऐसा होगा, फिर ऐसे समय में ये कौन व्यक्ति कहां है, वो समय का कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति हमको वही बहन चाहिए, वो बहन कहां चली गई, उससे कोई लेना देना नहीं है, कहां पे भी रहे, रूहानी प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, दो व्यक्तियों के बीच में भगवान खड़ा है। तो ये हो गया भाइयों की बहनों के प्रति दृष्टि, अब बहनों की भाइयों के प्रति दृष्टि, इसकी नौ बातें। तो इसमें सबसे पहला ग्रुप तो वो है जो ब्रह्मा कुमारी है, कुमारिया है और माता है, तीन है इसमें। और माताओं में भी वो माता है जिनके युगल ज्ञान में चलते, युगल ज्ञान में नहीं चलते, और छोटा बेटा या बड़ा बेटा या सारे पुरुष संसार के। सबसे पहली बात क्या समझना है, ये एक परमधाम की ज्योति है। बहने क्या समझे, ये भाई कौन है, एक परमधाम की आत्मा है। परमधाम में इसका आदि स्वरूप अनादि स्वरूप वो है, मुझे उसके वो संस्कार देखने, वर्तमान के संस्कार नहीं देखने। बाबा ने किसी मुरली में कहा है तुमको वर्तमान के संस्कार देखने ही नहीं है किसी के, केवल आदि अनादि संस्कार देखो बस। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, इस ड्रामा में तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते। आज की मुरली में प्रश्न नंबर पहला, यह ड्रामा बना बनाया एक्यूरेट है, यहां तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि सबका पार्ट फिक्स है। सबसे पहला ये कौन है, परमधाम की ज्योति है जो निज स्वरूप में स्थित है, सात निज स्वरूप में स्थित है, उसमें ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख शांत स्वरूप है, आनंद प्रेम स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है। दूसरा ये क्या है, आत्मिक भाई है मेरा, ये मेरा आत्मिक भाई है क्योंकि आत्मा पुरुष शरीर में आई है, इसलिए ये आत्मिक भाई है। सब भाई भाई की दृष्टि, कल की मुरली में था हिंदी चीनी भाई भाई, कहते केवल है करते नहीं है। तीसरा ये मेरा सगा भाई है, छोटा बड़ा जो भी हो इसको भाई ही समझना है। फिर वो सेंटर की ब्रह्मा कुमारी बहन, जितने स्टूडेंट्स वहां आते हैं भाई, ये सब मेरे भाई है, आत्मिक भी भाई है और शरीर की रीति से देखा जाए तो यही समझना जैसे मेरा अपना लौकिक भाई जैसा है, वैसे ही ये मेरा लौकिक भाई है। तो विकारों से रक्षा होगी। तीसरा, चौथा, सतयुग का देव है नारायण, स्वयं नारायण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर से सात बातें सतयुग की, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कलाओं से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, सतो प्रधान, आत्माभिमानी और सातवा अहिंसक। ये सारी चीजें इसमें है। उसके बाद में अगला, ये देव का मंदिर का देव, कौन सा देव, हनुमान है ये साक्षात, उसके हाथ में गदा। और ये कौन है, गणेश है, और नारायण भी ले सकते हैं, विष्णु, पर ये दो ज्यादा ठीक है, हनुमान। तो ये कौन है, हनुमान जी से ज्यादा पंगा नहीं लेना है। हनुमान जी के पास गदा है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, एक लगा दिया इधर तो गए काम से। तो हनुमान जी जब जा रहे थे, लंका पार कर रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, तो बीच में वो आई क्या, एक तो लंकिनी उधर मिली, शीरसा, क्या शीरसा, सूरसा, सूरसा, सूरसा मिली बीच में, सबको युक्ति से चकमा देकर निकल गया वो। तो बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई। तो समझना ये कौन है, हनुमान, शक्तिशाली, अतुलित बलधामा, राम काज करीबे को आतुर, ये राम काज करने के लिए आतुर है, इसके कार्य में, इसकी सेवाओं में बाधा मुझे डालनी नहीं है। राम रसायन जिनके पास था, सदा रहो प्रभु रघुपति के दासा, राम रसायन है उसके पास, जल दिलांज गए अचरज नाही, जल जल को लांग जाने वाला, इतनी शक्ति उसमें, इतना प्रचंड साहस बल उसमें है, इतना संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला है, वो बल का धाम है, शक्ति है वो, उसको कमजोर नहीं समझना। तो क्या समझे हर बहन एक भाई को, हनुमान है या तो गणेश है, वक्रतुंड प्रथमेश है, सबसे पहले अग्र पूजा इसकी होती है सभी देवताओं से पहले, इसके लिए उसके प्रति सम्मान का भाव, निंदा का भाव ना, चाहे छोटा सा कुमार क्यों ना हो, परंतु वो भी कौन है, सुख करता दुख हरता है, गणेश है, विघ्न हरता है, विघ्न विनाशक है, साक्षात गणेश है। तो ये हो गया मंदिर का देव। उसके बाद में अगला वो बाल ब्रह्मचारी है, उसका ब्रह्मचर्य शक्ति है उसके लिए भी और संसार के लिए भी। अपनी किसी भी हाव भाव से क्रियाओं से उसका मन विचलित न करना, अपने किसी भी शब्द से मैसेज से उसे डिस्टर्ब न करना, दैहिक हलचल में न वो आए, ये कर्तव्य है हमारा। चाहे वो पत्नी है, वो पति के ब्रह्मचर्य की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, वो ऐसा कुछ ना करे, ऐसी कोई इच्छा प्रकट ना कर दे जिसे करने के लिए वो बाध्य हो जाए, या फिर जिसके वजह से उसके मन में वासनात्मक विचार उत्पन्न हो और कामुक भावनाएं प्रवेश करें। तो वो कौन है? बाल ब्रह्मचारी है। उसको यही समझना कि ये बाल ब्रह्मचारी है। उसके बाद में अगला, वो एक ब्रह्मा कुमार है जो कितने ब्राह्मणों के समान है, 700 ब्राह्मणों के इक्वल। एक ब्रह्मा कुमार अर्थात 700 ब्राह्मणों के समान, एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात 100 ब्राह्मणों के समान। तो एक ब्रह्मा कुमार कितनी ब्रह्मा कुमारियों के समान फिर? तो ये कोई साधारण नहीं है जो अकेला बैठा है क्लास में, अकेला नहीं बैठा है, 700 लोग इसके अंदर समाये हुए हैं, 700 ब्राह्मण उसमें अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ही समझना है, बहुत महान आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। कभी कभी सोचते ना, एक ही तैयार हुआ कॉन्फ्रेंस के लिए, एक को क्या लेके जाना है? एक को नहीं, 700 को लेके जा रहे हो मधुबन, एक भी तैयार हो गया तो भी ले जाओ, शायद वही 700 को निर्माण करेगा एक दिन। उसके गर्भ में 700 आत्माएं छिपी हुई है। लास्ट, ये पूर्वज है या फिर पिता? अगर पिता थोड़ा मुश्किल होता है समझना, तो पूर्वज, इसके लिए दो ऑप्शन रखे कि ये कौन है। पूर्वज है, पूर्वज आत्मा है, या तो पिता तुल्य है, इसका वैसा ही सम्मान करना चाहिए, पिता के जैसी दृष्टि। और इन दोनों में, जैसे इधर बताया मां और इधर बताया पिता, ये दो सबसे पवित्र संबंध है संसार के। एक मां के प्रति कभी भी बेटे के मन में विकार का भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होता। बहन के लिए फिर भी दृष्टि चलायमान हो सकती है, मुरलियों में आता है, पर मां के लिए बहुत असंभव सा है, नहीं होता है। जिसने जन्म दिया है, मां के कदमों में जन्नत, ऐसा कहा जाता है। तो जब हमारा प्रेम ऐसा होगा, आत्मिक, इसमें कहीं भी शरीर का भान नहीं है, कहीं भी देह का अहंकार नहीं है, कहीं भी कोई वासना नहीं है, इन 9 के 9 भावों में कहीं पर भी कोई पाप नहीं है, कोई पापाचार, कोई भ्रष्टाचार, कोई व्यभिचार, इस तरह की कोई भी भावना नहीं। इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र, इतनी प्रांजल ये भावनाएं हैं। उर्दू में कहते हैं तकद्दुस, पवित्रता, पाकीजगी है इसमें, सेक्रो सैंक्ट प्यूरिटी, इमैकुलेट प्यूरिटी, इम्पिकेबल प्यूरिटी इसमें समाई हुई है, इन सभी भावों में। तो हर ब्रह्मा कुमारी क्या देखे? सबसे पहला पिता, या तो पूर्वज, क्या देखे? ये बाल ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा कुमार है, 700 कुमारियों के ब्रह्मा कुमारियों के बराबर। उसके बाद में क्या देखे? ये हनुमान, मंदिर का महावीर, या फिर गणेश। ये मारुति नंदन आया है, कोई साधारण आत्मा नहीं है, संजीवनी बूटी हाथ में लेके आया, संसार बेहोश पड़ा है, ये जगाने के लिए आया है। लाल लाल विजयी पांडव है, ये भी सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में सतयुग का कौन है? नारायण, साक्षात नारायण। नारायण का किसी को दर्शन हो जाए तो कितनी खुशी होती है। हमें भी ब्रह्मा कुमारी को भी उतनी खुशी होनी चाहिए, स्वयं नारायण का दर्शन। जो क्लास में आके बैठे हैं, एक एक नारायण का अवतार है। अगला सगा भाई है, लौकिक भाई जैसा है। उसके बाद में आत्मा, आत्मिक भाई है, ये सब मेरे आत्मिक भाई है। नौ दिन होते नवरात्रि का, एक एक दिन एक एक अभ्यास किया जा सकता है, सारा दिन एक ही अभ्यास, नौ दिन की तपस्या। आत्मिक दृष्टि की तपस्या है ये, रूहानी नजर की तपस्या है, स्पिरिचुअल विजन की तपस्या है ये, और स्पिरिचुअल एहसास की, पवित्र संबंध बनाने की तपस्या है ये, जिससे हमारे संबंध क्या हो जाए। अभी जो संबंधों में जो भी गड़बड़ है उसका एक ही कारण है देहभान, कहीं ना कहीं शरीर का भान है, इसलिए इच्छा है, एक्सपेक्टेशंस है, शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स है, हमने मैसेज किया उधर से कोई मैसेज नहीं आया, दुख है। क्यों? क्योंकि जहां आत्मिक प्रेम है वहां पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो कहीं पर भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बताया पहला परमधाम की ज्योति है। तो हमारे संबंध कैसे हो जाए, मधुर शुद्ध पवित्र हो जाए। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। इस लौकिक अलौकिक परिवार में लौकिक रिश्ते नहीं बनाने, लौकिक रिश्ते बना के नहीं रखने। ये हम कह रहे हैं ये भाव है, किसी को जबरदस्ती पिता नहीं बना के रखते, किसी को जबरदस्ती स्पेशल भाई बना दिया तो गए, फिर उसके लिए स्पेशल राखी, स्पेशल टोली, फिर उसको फोन, फिर उसका सब कुछ, वो वाली बात नहीं कर रहे हम। बात कर रहे हैं ये मन की मानसिक भावनाएं हैं कि हम उनको इन भावनाओं से देख रहे हैं, उनको जाके बता के होना भी नहीं है आप मेरे पिता हो तो और ही फंस जाएंगे, वो आपको बेटी बना दे तो बस मोह, नया मोह चालू हो गया। या किसी को भाई बना दो, अच्छा तुमको ये हुआ, किसने कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, अटैचमेंट, फोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल्स, साथ साथ सेवा करनी है, बंधन चालू। लौकिक में अलौकिक की उत्पत्ति। तो रूह से महसूस करो प्यार का, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसको ये संबंध जो भाई भाई ऐसा ही रहने दो, इसको कोई दूसरे लेप इधर उधर के संबंध नहीं जोड़ देना है। ये मेरा चाचा है, ये मेरा काका है, कोई चाचा नहीं, कोई काका नहीं, सब भाई। प्यार कोई बोल नहीं, कोई आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहां करती है ना, ये बुझती है ना रुकती है ना ठहरती है, कहीं नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है, केवल एहसास है। इट्स अ फीलिंग, परसेप्शन, एक रियलाइजेशन, एक अनुभव है कि मैं आत्मा। एक दिन, एक एक दिन, एक एक चीज का अनुभव करना। पहले दिन परमधाम में मैं भी और वो भी, सब परमधाम निवासी। दूसरे दिन मैं भाई, सब भाई। तीसरे दिन ये मैं भाई, ये बहन, सारी बहनें हैं। अगले दिन सतयुग, अगले दिन देव, अगले दिन ब्रह्मा कुमार, अगले दिन ब्रह्मचारी, अगले दिन पूर्वज, बहनों के लिए, भाइयों के लिए मां या फरिश्ता, या मैं फरिश्ता, ये सब फरिश्ता। एक एक दिन, एक एक दिन का अभ्यास, या एक ही दिन में सारे अभ्यास अलग अलग समय पर करने जरूर है। और विशेषतर ये सारे अभ्यास उनके लिए जो युगल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है, उसको वहां से उखाड़ के फेंकना है, दबोच के उस भावना को निकालना है, अंदर ही अंदर दबोच के ऐसे जो कुविचार कुभावना है उनको निकालना है और बाहर फेंकना है, और नई भावनाएं, नए रिश्ते, नए संबंध, नया परिवार, सब कुछ नया लाना है, तब कहीं जाके ये प्यार रूहानी होगा। ओम शांति। सिर्फ एहसास।